हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय से श्लोक संख्या 10। यदि आपके पास भगवद गीता यथारूप है तो आप उसे खोल सकते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धि बुद्धिमतां अस्मि तेजः तेजस्विनां अहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्
विद्धि पार्थ सनातनम्
बुद्धिर् बुद्धिमतामस्मि
बुद्धिर् बुद्धिमतामस्मि
तेजस् तेजस्विनामहम्
तेजस् तेजस्विनामहम्
बीजम्
बीजम्
बीज माम् मुझको सर्वभूतानां समस्त जीवों का विद्धि जानने का प्रयास करो पार्थ हे प्रथा पुत्र सनातनम् आदि शाश्वत बुद्धि ही बुद्धि बुद्धि मताम बुद्धिमानों की अस्मि हूँ तेजः तेज तेजस्विनाम तेजस्वियों का अहम् मैं अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद हे प्रथा पुत्र यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ तात्पर्य कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं पक्षी पशु मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं पेड़ पौधे अचर हैं वे चल नहीं सकते केवल खड़े रहते हैं प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु परब्रह्म साकार है निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है यह भगवद गीता में कहा गया है अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं वे मूल हैं जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में हुई है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान वे समस्त नित्यों के नित्य हैं वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वीजिष्णुं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब ऋषिकेश में रहने वाले भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं ऋषिकेश में ये कोरोना के संक्रमण की समस्या अभी उतनी अधिक नहीं है, और ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं, और ये भी आशा करता हूँ कि आप सबकी भक्ति भी सुचारू रूप से आगे चल रही है। वैसे तो आप गंगा के तट पर निवास करते हैं, प्राय प्रतिदिन गंगा का दर्शन करते हैं, गंगा जी के जल का स्पर्श करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी। जब पवन गंगा जी के ऊपर से बह के आपके शरीर को स्पर्श करता है तो निश्चित रूप से बहुत ही आनंद का अनुभव आप सबको होता है प्रतिदिन। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे याद है कि सन 87 में 87 में मैं वहाँ एक हफ्ते के लिए लगभग रहा था ऋषिकेश के आश्रम में, और हम लोग प्रातः काल में उठ के गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। हमारे सबसे याद करने लायक दिन थे उस समय। और फिर प्रातः काल में गंगा के तट पे बैठकर थोड़ी देर उस समय जप करके फिर आश्रम में लौट के आते थे। तो आप उसी स्थान में रह रहे हैं तो वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। और साथ साथ अन्य स्थानों से भी आप यदि कोई जुड़े हुए हों इंटरनेट के द्वारा, आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। तो आज मैंने एक श्लोक को चुना है चर्चा करने के लिए, सातवें स्कंद भगवद गीता के सातवें अध्याय का 10वां श्लोक। इस अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। सर्वभूतानाम अर्थात सारे प्राणी जितने भी हैं, और वो कहते हैं कि मैं उनका बीज हूँ। विद्धि, ये जान लेना चाहिए हे पार्थ, ये जान लेना चाहिए पार्थ कि मैं ही समस्त प्राणियों का बीज हूँ। किस तरह का बीज हूँ? सनातन, सदैव मैं बीज रहता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल सृष्टि के सृजन के समय मैं बीज बन जाता हूँ, हर समय सदैव मैं उनका बीज हूँ। और सनातन शब्द का तात्पर्य ये भी है कि मैं मूल रूप से समस्त प्राणियों का बीज हूँ। हम सब जानते हैं, जीवन में अनुभव भी करते हैं कि बीज के बिना किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं होता, किसी भी प्राणी का जन्म नहीं होता है। अब देखिए, ये 84 लाख योनियां हैं जिनमें चर और अचर प्राणी दोनों ही सम्मिलित हैं। चर वो होते हैं जो चलते फिरते हैं, ऐसे चर प्राणियों में से थोड़े होते हैं जो जमीन पर चल रहे होते हैं, जैसे कि पशु हैं और मनुष्य हैं। थोड़े ऐसे हैं जो समुद्र में चरते हैं, तैरते हैं, मछलियां हैं इत्यादि। थोड़े ऐसे हैं जैसे पक्षी हैं जो आसमान में उड़ते हैं, हवा में चलते हैं। और फिर ऐसे अचर प्राणी भी होते हैं जैसे पेड़ पौधे इत्यादि, वो चलते नहीं हैं, एक जगह में ही स्थित होते हैं। तो ये सारे जितने भी प्राणी हैं इस भौतिक सृष्टि में, कुल मिलाकर पद्म पुराण में बताया गया है 84 लाख योनियां हैं। तो इन 84 लाख योनियों के अंतर्गत ये सारे के सारे प्राणी आते हैं, चर अचर सब। और इन सब के बीज, मूल बीज श्री कृष्ण है। थोड़े दिन पहले मैं श्रील प्रभुपाद जी का एक संवाद सुन रहा था किसी एक सज्जन से। तो प्रभुपाद उनको समझा रहे थे कि विज्ञान का मतलब है ये ढूंढ निकालना कि बीज, मूल बीज है वो कौन है। विज्ञान के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे पहले हमें ढूंढ निकालना है कि बीज कौन है। तो कहते हैं कि देखिए, हम सब हमारे माता पिता से आए हैं, हमारे पिता ने बीज दिया और हमारे जो पिता हैं उनका बीज भी उनके पिता ने दिया। इस तरह से मूल रूप से आज आदि बीज प्रदान करने वाले कौन हैं, कहाँ से ये सब कुछ उत्पन्न होता है। तो जब पूर्ण विराम पे पहुंचते हैं, फुल स्टॉप, जब उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जो किसी के पिता हैं परंतु उनका कोई, उनके कोई पिता नहीं है, उनके कोई माता नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि वो भगवान है। भगवान वो हैं जो सबके पिता हैं परंतु उनके कोई पिता नहीं है। तात्विक रूप से, रस के दृष्टि से भगवान तो माता पिता को स्वीकार करते ही हैं क्योंकि वो दिव्य प्रेम और रस का आदान प्रदान करने के इच्छुक होते हैं, दिव्य आनंद का स्वाद लेना चाहते हैं, वो दूसरी बात है। परंतु तत्व के दृष्टि से तो भगवान के कोई माता पिता नहीं होते हैं। तो फिर उस सज्जन ने उनसे पूछा कि भगवान को, भगवान के स्रोत कौन है। आप कहते हैं कि भगवान वो हैं जो हर चीज के बीज हैं, हर व्यक्ति के, हर प्राणी के बीज हैं, तो फिर भगवान के बीज कौन है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि पहली बात तो ये है कि भगवान का कोई बीज नहीं है। भगवान शब्द की परिभाषा ही ये है कि भगवान ही हर वस्तु के, हर व्यक्ति के उद्गम हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप कहना पूछना चाहते हैं कि भगवान के उद्गम कौन हैं, तो आपको सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि भगवान हैं कौन। जब भगवान कौन है ये आप समझेंगे तब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि इनके उद्गम कौन हैं। तो इसलिए भगवान को जानना चाहिए सर्वप्रथम। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने यहाँ चर्चा की। और ये भी प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभु जब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो हर प्राणी के बीज हैं, इसका तात्पर्य ये भी है कि हमारे अंदर जितने भी प्रवृत्तियां हैं वो भी सब भगवान से ही उद्भूत होती हैं। जैसे हमारे अंदर क्रोधित होने का स्वभाव है, ये एक वृत्ति है, कभी कभी हम सब क्रोधित हो जाते हैं। हमारे अंदर किसी को प्रेम करने की प्रवृत्ति है, वो भी भगवान के अंदर है। तो इस तरह से जितने भी प्रवृत्तियां हम सबके अंदर हैं वो इसलिए हैं कि मूल रूप से वो भगवान में विद्यमान होती हैं, अन्यथा हमारे अंदर कैसे आ सकती हैं वो। जब मूल में या बीज में वो गुण नहीं है तो फिर जब उस बीज का विस्तार किसी प्राणी में होता है तो उसमें कैसे गुण आ सकते हैं। आजकल वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है कि हम सब की जो प्रवृत्तियां हैं, हम सब का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो हमारे जीन्स में रहता है, डीएनए, आरएनए इत्यादि, इसके लिए ऐसे वैज्ञानिक सारे व्याख्याएं दी जाती हैं। तो इन सब के बीज श्री कृष्ण हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विताः। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, ऐसे जानकर भजन्ते माम बुध भाव समन्विता। तो जो बुध होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, इस तथ्य को जानकर भली भांति भक्ति पूर्वक मेरी सेवा में रत रह जाते हैं। तो इस तरह से जब हम जानते हैं कि मूल कौन है, बीज कौन है, और ये कृष्ण है, तो बीज को ढूंढ निकालने के बाद हमारा कर्तव्य होता है कि उसका सिंचन करें, तब जाकर वो पौधा बनेगा, पौधा आगे चल के पेड़ बनेगा। तो उसी तरह से हमें जब पता चलता है कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के समस्त योनियों के बीज हैं, उन्हीं से सब कुछ उद्भूत होता है, तो फिर हमें चाहिए कि हम उस बीज का सिंचन करें। कैसे सिंचन करें? उनकी सेवा करके, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जब हम सेवा करेंगे, तो फिर हमारे हृदय के भीतर वो भक्ति लता बीज उगेगा, वो पौधा बनेगा, और फिर इस तरह से कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का उदय हमारे हृदय में होगा। और इसके बाद हम इन भौतिक सृष्टि के जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसी श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में थोड़ी महत्वपूर्ण बातें भी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में जिस तरह से मूल जड़ का देखभाल करता है, उसी तरह से श्री कृष्ण संपूर्ण योनियों का, संपूर्ण सृष्टि का देखभाल करते हैं। इसलिए जड़ जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद यहाँ पे कठोपनिषद का एक श्लोक बताते हैं ना, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको विदधात एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वैसे हम सब जितने भी प्राणी हैं, हम सब चेतन हैं, हम सब नित्य हैं, परंतु हम नित्य चेतन व्यक्तियों में से, प्राणियों में से प्रधान जो है, सबसे प्रमुख जो है, सबसे मूल जो है, वो कृष्ण है। हमारी तरह कृष्ण भी चेतन है, कृष्ण भी नित्य है, परंतु कृष्ण और हम में अंतर ये है कि कृष्ण मूल चेतन व्यक्ति हैं, मूल और सबसे प्रधान नित्य व्यक्ति हैं, ये अंतर है। और एक बात जो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं वो ये है कि वास्तव में ये जो जड़ है, ये मूल है संपूर्ण सृष्टि का और सारे प्राणियों का, वो केवल एक निराकार ब्रह्म नहीं है, वो साकार पर ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान है। और एक जगह आगे चल के हम थोड़ी संक्षेप में चर्चा करेंगे कि वैसे ये संपूर्ण जितने भी योनियां हैं वो भौतिक तत्वों के ऊपर आधारित हैं। दो चीजें हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। दसवें स्कंद में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन न तद अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम। वो कहते हैं यह चापि सर्वभूतानां बीजं तम अहम अर्जुन, कि यत च अपि सर्वभूतानां बीजं। फिर से उसी बात को दोहराते हैं कि मैं ही समस्त प्राणियों का बीज हूं, और कोई भी प्राणी चाहे वो चर हो अचर हो मेरे बिना जी नहीं सकता। किसी भी वस्तु का किसी भी प्राणी का भगवान के बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ही हर चीज के मूल हैं। वैसे श्रीधर स्वामी और अन्य हमारे जो आचार्य हैं वो भी बहुत सुंदर बातें बताते हैं। वो ये कहते हैं कि वास्तव में प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उसको हम अलग नहीं कर सकते। हम जीव के या प्राणी के अस्तित्व को और भगवान के अस्तित्व को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक जो संबंध है वो अटूट है। भगवान से सब कुछ उत्पन्न होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि भगवान या भगवान सब कुछ है, परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ भगवान है। भगवान सब कुछ है इस दृष्टि से कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, सब कुछ भगवान पर निर्भर है। कोई भी वस्तु कोई भी प्राणी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। किसी चीज का अस्तित्व भगवान से अलग नहीं है। दोनों का संबंध इस तरह से सनातन है, अटूट है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भगवान सब कुछ है, परंतु सब कुछ भगवान नहीं है। यदि हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ भगवान नहीं है और इतना ही कहेंगे कि भगवान सब कुछ है, तो फिर क्या होगा? लोग जैसे कि आजकल लोगों के मन में गलत धारणा होती है कि सब कुछ भगवान है, तो किसी भी चीज की उपासना हम कर लें, किसी भी पत्थर को उठा लें और उसकी पूजा करना शुरू कर लें, तो ऐसे हम नहीं मान सकते। किसी भी सड़क पे पड़े रहने वाले पत्थर को उठाकर हम कहें कि ये भगवान है, ये ठीक नहीं होगा। ये भगवान की शक्ति है, भगवान से अभिन्न है इस दृष्टि से कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। परंतु इस पत्थर को हम भगवान मानकर उसकी उपासना नहीं कर सकते, या किसी भी प्राणी को उठाकर हम कह नहीं सकते कि ये भगवान, इसकी पूजा करो। तो इस दृष्टि से ये सावधानी जो है हमें रखनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में दसवें स्कंद में कहते हैं कि इसलिए तो भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति ही हर एक प्राणी में है। जिस शक्ति के द्वारा वो आगे चल के अन्य प्राणियों को भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसे जो अन्य प्राणियों को उत्पन्न करने की शक्ति है भगवान से आती है। साथ साथ जो बीज हैं भगवान, वो हर प्राणी में आगे चलते रहते हैं अनादि अनंत समय तक। आजकल ये वैज्ञानिक रूप से लोग कहते हैं कि जीन्स जो होते हैं, जो अंग्रेजी में जीन्स कहते हैं, जो RNA वगैरह होता है, उसके माध्यम से किसी एक योनि में जो गुण होते हैं वो अलग अलग नस्लों में अलग अलग पीढ़ियों में वैसे के वैसे चलते रहते हैं। तो इसलिए जो बिल्लियों के संतान जो होते हैं वो बिल्ली ही होते हैं, जब दो कुत्तों के संतान जो होते हैं वो कुत्ते ही होते हैं, वो कोई तीसरे या दूसरे किसी योनि के नहीं होते हैं। ये क्यों है? क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की और 84 लाख योनियों की रचना उन्होंने की, तो उस समय उन्होंने इस तरह से रचना की 84 लाख योनियों के कि बीज हर एक योनि में प्रदान कर दिया उन्होंने, इस तरह से कि उस योनि के जो गुण हैं वो बहुत विशेष होंगे। और जब संतान की उत्पत्ति उस योनि के जो प्राणी है वो करेंगे, तो उसी प्रकार के प्राणी उत्पन्न होंगे, किसी अन्य प्रकार के प्राणी नहीं होंगे। तो इस तरह से ये ये भी एक इस तरह से भी हम इस बीज शब्द को समझ सकते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी ये भगवद गीता के 14वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। ये जो प्रकृति है ये योनि के तरह है और जिसका गर्भधारण भगवान श्री कृष्ण करते हैं बीजों के रूप में, बीजों के द्वारा या आत्माओं के द्वारा, विभिन्न जितने भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, उनके उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण माता प्रकृति का गर्भ धारण करते हैं। तो अन्य जगह भी प्रभु कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि शरीर को क्षेत्र कहते हैं और शरीर में निवास करने वाले जो आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो यहाँ भौतिक सृष्टि में जो जो कुछ भी है उसका अस्तित्व इसलिए है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है, जड़ वस्तु और चेतन वस्तु दोनों के संयोग से सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, चाहे वो 84 लाख योनियां हो या कुछ भी हो, हर एक लोक, हर एक ग्रह, यह पृथ्वी लोक हो या अन्य कोई भी लोक हो इस ब्रह्मांड के भीतर, सब कुछ इसलिए चल रहा है कि जड़ और चेतन वस्तु का संयोग हो रहा है। तो जड़ और चेतन वस्तु का संयोग कौन करा रहा है, किसकी योजना से हो रहा है, किसके संचाल, कौन इसको संचालित कर रहा है, किसकी अध्यक्षता में ये सब हो रहा है, भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। भगवान ही हैं श्री कृष्ण जो कि बीज प्रदान करते हैं और बीज प्रदान करने के बाद फिर इस तरह से वो संयोग करवाते हैं जड़ और चेतन वस्तुओं का। इस तरह से संपूर्ण सृष्टि खिल उठती है। तो भगवान कृष्ण ही स्रोत हैं सब चीजों के। वैसे यहां जितने भी प्राणी हम हैं, जीवात्माएं हम हैं ना, हम आधारित हैं इस भौतिक जगत पर। हमारा आधार यहां पे इस समय है ये भौतिक सृष्टि। यदि भौतिक सृष्टि न होती तो हमारे भौतिक शरीर को का भरण पोषण हम नहीं कर पाते। यहाँ पे हम पेड़ पौधे खाते हैं, फल खाते हैं, हम प्राणवायु का सांस लेते हैं, इसलिए हम जीवित रह पाते हैं। तो हमारा आधार है, जीवन का आधार है ये महत्तत्व या प्रधान, ये भौतिक सृष्टि। ये भौतिक सृष्टि का मूल रूप है महत्तत्व या प्रधान, तो इसको भी ब्रह्म कहते हैं। इसलिए यहाँ इस श्लोक में 14वें श्लोक में 14वें अध्याय के जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महत ब्रह्म, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ब्रह्मन, इस शब्द के कई तात्पर्य होते हैं। एक इसका अर्थ है ये भौतिक सृष्टि का मूल रूप जिसको प्रधान कहते हैं या महत तत्व कहते हैं। महत इसलिए क्योंकि इसका विस्तार अनंत होता है और इसमें कोई स्थान या काल की सीमा नहीं होती है। ये भौतिक सृष्टि का विस्तार इतना चौड़ा है, इतना अधिक है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसको महत कहते हैं। और ब्रह्म इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये आगे बढ़ता है, ये और इसकी वृद्धि होती है। ब्रही, ब्रही मतलब जिसका विस्तार होता है, जिसकी वृद्धि होती है। तो इसलिए भौतिक सृष्टि का जो मूल है प्रधान, इसको भी महत ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मन भी कहते हैं इसको। श्रुति शास्त्रों में भौतिक सृष्टि को भी ब्रह्मन कहा गया है। अधिकतर हम जब ब्रह्मन शब्द का प्रयोग करते हैं तो निराकार आध्यात्मिक स्वरूप भगवान का, उसका संबोधन हम करते हैं। परंतु कभी कभी भौतिक सृष्टि का जो मूल है महत ब्रह्म, महत तत्व, प्रधान इत्यादि, इसको भी ब्रह्मन कहते हैं। तो सारे 84 लोग जो योनियां हैं, 84 लाख जो योनियां हैं, वो सब इस महत ब्रह्म प्रधान पर आधारित हैं। और ये महत ब्रह्म, ये प्रधान या महत तत्व, ये निराकार आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति पर आधारित है। कैसे? क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि ये सब तैर रही है निराकार ब्रह्म में, और निराकार ब्रह्म जो है उसका आधार है भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि वो भगवद गीता में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ये ब्रह्मन, ये निराकार ब्रह्म ज्योति क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होने वाला आध्यात्मिक तेज है। तो भगवान श्री कृष्ण के तेज में आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों विद्यमान रहते हैं। तो विद्यमान ये भौतिक सृष्टि जो मूल रूप से प्रधान या महत ब्रह्म के रूप में विद्यमान है, वो इस निराकार ब्रह्म में है। और फिर भगवान महाविष्णु अपने कृपा दृष्टि के द्वारा, दृष्टिपात के द्वारा समस्त जीवों को प्रदान करते हैं इस प्रकृति में। और इस तरह से फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग करके सारे सृष्टि का सृजन होता है, 84 लाख योनियों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से ये क्रम है। हमारा आधार है भौतिक प्रकृति, प्रकृति का आधार है निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म का आधार है श्री कृष्ण जो पर ब्रह्म है। इस तरह से मूल बीज, मूल आधार हर चीज के भगवान श्री कृष्ण ही है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। केवल इतना जानना कि भगवान महान है, इतना काफी नहीं है। हम ये भी जानना चाहिए कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप है, उनके दिव्य गुण हैं, और उनके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारे प्रेम को विकसित करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जब भगवान को मूल मानते हैं हम, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि वो सब हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम् बीजः प्रधः पिता। हमारे मूल माता, मूल पिता, मूल आधार, मूल बीज भगवान कृष्ण ही हैं। तो इस तरह से ये वास्तविक घर वापसी है कि हम मूल बीज को जान लें। मूल बीज भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए हमें उनके शरण में जाके उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपने वो मोची और नारद मुनि की कथा तो सुनी ही होगी ना, कि एक बार जब नारद जी जा रहे थे वैकुंठ, नारद मुनि तो सब जगह भ्रमण करते हैं ना, भौतिक सृष्टि में भी और भगवान के धाम में भी। तो वो जब जा रहे थे तो एक ऐसे ब्राह्मण से मिले जिनको थोड़ा अपने विद्वत्ता आदि पर घमंड था, तो उनसे मिले तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो नारद जी। तो नारद जी ने कहा मैं वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा तो आप जाएंगे अवश्य, तो मेरा प्रणाम करिएगा मेरी ओर से भगवान नारायण के चरण कमलों में, और उनसे ये प्रश्न पूछिएगा कि मैं वैकुंठ जगत में लौट के कब आऊँगा, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मुझे कब मिलेगा। और तो नारद जी ने कहा ठीक है। उसके पहले जो है वो एक मोची से भी मिले थे, तो मोची बेचारा अपने जूते वगैरह तैयार सिलाई कर रहा था, जूते चप्पल आदि तैयार कर रहा था। तो जब उनसे पूछा मोची ने जब नारद मुनि से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, तो अवश्य आप जाके वहाँ मेरी ओर से प्रणाम कीजिए भगवान को, और ये भी पूछिए कि मैं इस भौतिक जगत से मुक्त कब हो जाऊँगा, वैकुंठ जगत कब जा पाऊँगा। तो नारद जी ने कहा बिल्कुल। नारद जी गए वैकुंठ में, भगवान का दर्शन किया, और लौटने से पहले उनको याद आया कि मोची भी मिले थे और वो ब्राह्मण भी मिले थे, तो उनकी दोनों की ओर से उन्होंने प्रणाम अर्पण किए भगवान को। और फिर उनको ये भी याद आया कि उन्होंने प्रश्न किया था, ये प्रश्न ये था कि कब वो वैकुंठ जगत लौट के जाएंगे। तो भगवान ने उत्तर दिया कि जो ब्राह्मण है उसे मेरे धाम में आने के लिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए हजारों जन्म लग जाएंगे, परंतु ये जो मोची है ये इसी जन्म के अंतर, इसी जन्म के बाद में जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है। जब लौटे पृथ्वी लोक पर वापस आए तो उस समय पहले वो मिले उस ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण बहुत खुश हुए उनको मिलकर। तो पूछा उनसे कि क्या आपने भगवान नारायण का दर्शन किया, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल किया, तो भगवान नारायण को मेरा प्रणाम अर्पण किया, तो बिल्कुल किया। तो आपने ये भी प्रश्न पूछा होगा कि मैं वैकुंठ कब लौट के जाऊँगा, अवश्य भगवान ने ये उत्तर दिया होगा कि इसी जन्म के अंत में जब मैं प्राण त्यागूंगा तो मैं सीधे भगवान के धाम में ही जाऊंगा, ऐसे कहा होगा ना उन्होंने। तो नारद मुनि ने कहा जी नहीं ऐसे तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आपको हजारों जन्म लग जाएंगे। तो ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना विद्वान ब्राह्मण हूँ और पठन पाठन में इतना निपुण हूँ, यजन याजन भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ब्राह्मणों के सारे लक्षण मुझ में हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि आपने भगवान से यह प्रश्न नहीं किया होगा, या तो फिर मुझे संशय ये है कि आपने भगवान का दर्शन किया ही नहीं, इसलिए आप ऐसे उलपटान बातें कर रहे हैं। ऐसे कैसे संभव होगा कि इतना विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी मैं भगवान के धाम को प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। तो नारद मुनि ने कुछ उत्तर नहीं दिया, आगे चलते गए। तो जब नारद जी भगवान नारायण से मिले थे तो नारायण भगवान ने नारद मुनि से कहा था कि यदि ये ब्राह्मण और मोची आपसे पूछें कि भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में, तो उस समय ये उत्तर देना कि भगवान नारायण एक सुई के नोक से एक हाथी को घुसा रहे थे और निकाल रहे थे उस। तो जाते जाते जब नारद मुनि वहां से निकल रहे थे तो ब्राह्मण ने नारद जी से पूछा कि आप कहते हैं कि आप भगवान नारायण के पास गए, मुझे तो संशय है कि आप गए या नहीं, तो आप यदि वास्तव में गए होंगे तो बताइए कि भगवान नारायण क्या कर रहे थे वहां पर, जब आप वहां पर गए तो उन्होंने बताया कि एक सुई की नोक से भगवान एक हाथी को निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण हंसने लगे, आप तो मजाक कर रहे होंगे, ऐसे थोड़ी ना संभव है, सुई का नोक इतना छोटा होता है और हाथी इतना बड़ा होता है, तो एक सुई की नोक से भगवान इतने बड़े जानवर को कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कि आप गए ही नहीं वैकुंठ जगत में। तो नारद मुनि ने कुछ कहा नहीं, आगे चलते गए, मोची के पास आए तो मोची से पूछा, मोची से बात करने लगे तो मोची ने कहा कि प्रणाम नारद जी, तो आप क्या गए थे वैकुंठ, भगवान नारायण का दर्शन किया आपने? था बिल्कुल किया, मेरा प्रणाम अर्पण किया उनको? बिल्कुल अर्पण किया। तो मेरा प्रश्न उनसे पूछा कि मैं वैकुंठ जगत कब जाऊंगा? तो नारद जी ने कहा, पूछा, और भगवान ने उत्तर दिया कि आप इसी जन्म के अंत में जब प्राण त्यागोगे तो सीधे भगवान के धाम वैकुंठ जगत को प्राप्त हो जाओगे। तो मोची भाव विभोर हो गया और प्रेमावेश में आके गदगद वाक्यों में कहने लगा, उसकी आंखों से अश्रुधारा होने लगी और उन्होंने कहा, भगवान कितने कृपालु हैं कि मुझ जैसे अयोग्य पापी व्यक्ति को भी वो भगवान उनके धाम में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, यद्यपि मेरे अंदर कोई ऐसे गुण नहीं है, फिर भी भगवान मुझे ले जाना चाहते हैं, देखिए भगवान कितने महान हैं। और फिर भी चलो बताओ ये कि जब आप भगवान के धाम में गए थे तो क्या कर रहे थे भगवान वहां पर? तो नारद जी इस प्रश्न के लिए तैयार थे, तो उन्होंने कहा, भगवान एक सुई के नोक से एक हाथी को निकाल रहे थे। तो तुरंत आनंद के द्वारा उछल पड़े ब्राह्मण और नृत्य करने लगे जोर जोर से, देखो मेरे भगवान नारायण कितने महान है, कितने महान है। तो नारद जी ने उनकी परीक्षा की, उन्होंने पूछा कि आप ये विश्वास करते हैं कि भगवान ऐसे कर रहे थे? क्या यह संभव है कि एक छोटे से सुई के नोक से इतना बड़ा हाथी निकल पाए? तो फिर उस मोची ने कहा कि देखो यहां ये बरगद का वृक्ष है, कितना विशाल है, देखो कहां तक ये, कितने लंबे, इसकी चौड़ाई देखो कितनी है, देख भी नहीं पा रहे हैं कि इतना चौड़ा है ये वृक्ष, इसकी शाखाएं कहां कहां तक फैली हुई हैं, और वहां एक फल पड़ा है इसका, निकाल के ले देखिए। उसने उठाया और इस एक फल के अंदर देखिए कितने सारे बीज हैं और ये बीज कितने छोटे हैं और ये हर एक बीज के अंदर ये संपूर्ण बरगद का वृक्ष समाया हुआ है, इतना विशाल ये वृक्ष है और ये एक इतने छोटे से बीज में है। जब ये बीज हम मिट्टी में बोते हैं, इसको पानी देते हैं, तो अपने आप आगे चल के विस्तृत होकर इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। तब इतना बड़ा पेड़ जब इतने छोटे से बीज में हो सकता है, तो भगवान नारायण एक बड़े से हाथी को सुबह के नोक से क्यों नहीं निकाल सकते? भगवान तो संपूर्ण सृष्टि के बीज हैं, संपूर्ण सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है। तो फिर एक छोटे से सुई के नोक से हाथी को निकालना भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो जब ये सुना नारद मुनि ने, ऐसा उत्तर मोची से सुना, तब वो समझ पाए कि भगवान नारायण ने ऐसे निर्णय क्यों लिया था। निर्णय इसलिए लिया था कि ये मोची भले इतना बड़ा विद्वान न था, वो बड़े बड़े यज्ञ आदि संपन्न करने के लिए सक्षम नहीं था, मंत्रों का ज्ञान नहीं था, फिर भी उसके हृदय में अटूट श्रद्धा थी, भगवान के प्रति प्रेम था, इसलिए वो भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य था। और दूसरी ओर जो ब्राह्मण था वो विद्वान अवश्य था, मंत्रों को जानता था, तंत्रों को जानता था, यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के लिए सब कर्मकांडीय जितने भी अनुष्ठान होते हैं उनको करने में वो पूरी तरह से समर्थ था, परंतु उसके हृदय में श्रद्धा नहीं थी, भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। इसलिए भगवान ने कहा था कि ये व्यक्ति मेरे धाम आने के लिए योग्य नहीं है। तो यदि हम भी उस मोची के चरण कमलों में चलें, ये जानकर श्रद्धा रख के कि भगवान ही संपूर्ण चीजों के उद्गम हैं, बीज हैं, हम सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हीं के शरण में हमें जाना चाहिए, उन्हीं के चरण कमलों में आश्रित होकर उनकी सेवा उनके हमें करनी चाहिए, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जब शुद्ध प्रेम हमारे जीवन में उदित होगा तब हम जीवन के सफलता को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन के अंत में फिर भगवान हमें उनके धाम में ले जाएंगे। हरे कृष्णा।
कृष्णा भाई जी, महाविष्णु में जीवात्मा कहाँ से आते हैं?
महाविष्णु में जीवात्माएं कहाँ से आते हैं? ये जीवात्माएं तो भगवान के तटस्था शक्ति के विस्तार हैं और इसलिए ये महाविष्णु में रहते हैं। जब सृष्टि का संहार होता है तो जिन आत्माओं जो आत्माएं जो हैं वो मुक्ति के योग्य होते हैं वो तो भगवान के धाम चले जाते हैं, परंतु जितने बाकी आत्माएं रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में, अनगिनत होते हैं वो, तो उनको तो यहीं पे रहना पड़ता है, तो वो महाविष्णु के दिव्य शरीर में विलीन होकर रह जाते हैं, उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। यद्यपि वो विलीन होकर रहते हैं परंतु ये थोड़े समय के लिए है। फिर जब महाविष्णु सृष्टि का सृजन करते हैं तो अपने दृष्टिपात से इन्हीं जीवात्माओं का इन्हीं जीवात्माओं को माता प्रकृति में प्रदान करते हैं और इस तरह से माता प्रकृति का गर्भधारण होता है।
उनका प्रश्न हमारे महाविष्णु के अंदर, महाविष्णु भी उनके अंदर जो जीवात्मा पूछ रहे थे, महाविष्णु क्या है? भगवान के
महाविष्णु तो भगवान के विस्तार है ना, कला है। भगवान के विस्तार के विस्तार के विस्तार, ऐसे इनको कला कहते हैं। तो इनसे ये सारे भगवान कृष्ण, ये जीव कौन है? जीव आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण के तटस्था शक्ति से उत्पन्न हुए हैं और भगवान महाविष्णु से उत्पन्न होते हैं। यहाँ जो भी जीव सृष्टि में रहते हैं तटस्था शक्ति से उत्पन्न, ये इनका सनातन है, तो हम ये नहीं पूछ सकते कि कब हुआ कैसे हुआ। जिस तरह से भगवान महाविष्णु, भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत सनातन है, उसी तरह से आत्मा भी सनातन है। तो ऐसे जिस तरह से काल का अनुभव इस भौतिक सृष्टि में हमारा है, इस काल की समझ हम आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं कर सकते, हम उसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आत्मा का भी अस्तित्व अनादि काल से है। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि जीव आत्मा की उत्पत्ति कहां से हुई, जीव आत्मा का अस्तित्व भी अनादि काल से है। ठीक है
महाराज, कैन नारद मुनि गो टू गोलोक बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड एंड कैन अदर्स योगीज लाइक दुर्वासा क्रॉस मटेरियल वर्ल्ड टू वैकुंठ?
अच्छा, तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या नारद जी वैकुंठ से गोलोक जा सकते हैं? पहला प्रश्न है, अवश्य जा सकते हैं। यदि नारद जी वास्तव में गए भी, जब वो आए गोवर्धन के पास नारद कुंड में, नारद जी बैठे, उन्होंने तपस्या की, वहाँ पर नारद भक्ति सूत्र की रचना भी की उन्होंने, और फिर नारदीय गोपी बनकर वो भी रासलीला देखने के लिए आए थे, और तो यहाँ गोलोक वृंदावन, यहाँ के वृंदावन में और आध्यात्मिक जगत के गोलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है ना, तो नारद जी अवश्य प्रवेश कर सकते हैं यदि वो चाहे तो। और जहाँ तक दुर्वासा मुनि आदि की बात है, यदि वो भगवान के भक्त बन जाएं, नारद मुनि जैसे महान भक्तों की कृपा प्राप्त कर लें, तो वो भी अवश्य वैकुंठ जगत को प्राप्त हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, यदि ऐसे व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्तों का संग और उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो फिर वो भी शुद्ध भक्त बन के भगवान को के धाम को प्राप्त हो सकते हैं।
महाराज, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है, तो सारे दुर्गुण जो बैड क्वालिटीज, वो भी भगवान कृष्ण से ही हमारे अंदर आते हैं।
तो प्रश्न ये है कि हमारे अंदर जितने भी प्रवृत्तियां हैं, गुण हैं, वो मूल रूप से भगवान में हैं, तो जितने भी हमारे अंदर दुर्गुण हैं, वो भी भगवान के अंदर होने चाहिए, ऐसा प्रश्न है। तो नहीं, जिस तरह से इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, एक दृष्टांत या उपमा दी थी, सूरज के सामने अंधकार नहीं हो सकता, जहां भी सूरज की रोशनी पहुंचती है वहां पर उजाला होगा, वहां पे अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। तो हम जब सूरज की ओर देखते हैं तो सब जगह हमें उजाला ही दिखेगा, परंतु यदि हमने सूरज को पीठ किया और जब हम भगवान को पीठ सूरज को पीठ दिखाते हैं और सामने देखते हैं, तो हमारी छाया दिखाई पड़ती है, और छाया अर्थात अंधकार। तो ये सूरज का गुण नहीं है, ये इसलिए हो रहा है कि हमने सूरज को पीठ दिखाया है, तो इसलिए अंधकार का अस्तित्व इसलिए हो पा रहा है कि सूरज की रोशनी होते हुए भी सूरज में अंधकार का लेश मात्र भी अस्तित्व न होने के बाद भी हम सूरज को पीठ दिखा रहे हैं, इसलिए हमारे सामने अंधकार अब हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अंदर दिव्य गुण हैं, वो सदा दिव्य गुणों से युक्त हैं, संपन्न रहते हैं, षडैश्वर्य षडैश्वर्यों से संपन्न रहते हैं, सद्गुणों से, दिव्य सद्गुणों से संपन्न रहते हैं। फिर भी जब जीव इस भौतिक सृष्टि में जिद करके अपनी लेश मात्र जो एक स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करके भगवान को पीठ दिखाता है, अर्थात भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता है, और संसार का भोग करने का प्रयास करता है, तो फिर उसे इस भौतिक सृष्टि के माया का अंधकार के का प्रभाव स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह से वो माया के अधीन हो जाता है और दुर्गुणों से ग्रस्त हो जाता है। तो ये दुर्गुण भगवान में नहीं होते हैं। ये दुर्गुण क्या होते हैं? भगवान के अंदर जो सद्गुण हैं, उनका विकृत रूप है। वो विकार क्यों आता है? क्योंकि हमारी चेतना का विकार हो चुका होता है भगवान को पीठ दिखाने के कारण।
How do we understand Ram's pastime by bringing back to the life to the Vanar Sena back to life after Sita Mata freed, where in Mahabharata war Krishna wiped too many those who were on side of Dharma?
तो प्रश्न ये है कि हम ये कैसे समझ सकते हैं कि रामायण में श्री कृष्ण ने वानर सेना को पुनर्जीवित कर दिया, ये प्रश्न है ना? क्योंकि वानर सेना में से अधिकांश जितने भी थे उनकी मृत्यु हो गई रणभूमि पर, तो श्री रामचंद्र ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। कैसे जीवित कर दिया? उत्तर ये है कि बहुत सरल है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है।
महाभारत में जो धर्म के साइड में थे उनका भी ध्यान, तो उनको भी वाइप आउट किया कृष्णा ने, तो ऐसा क्यों?
महाभारत में जो धर्म के पक्ष में नहीं थे,
धर्म के
पक्ष में
भी
थे,
हाँ, उनकी भी मृत्यु हो गई और उनको वापस भगवान ने जीवित
किया। अच्छा अच्छा, तो प्रश्न ये है कि रामायण में ये देखा जाता है कि जो धर्म के पक्ष में थे वानर सेना, जो भगवान के सेवक थे, मृत्यु के बाद श्री रामचंद्र ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। परंतु महाभारत में ये देखा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर धर्म के पक्ष में लड़ने वाले योद्धा जो थे उनका भी देहांत हो गया, परंतु उनको भगवान श्री कृष्ण ने जीवित पुनर् नहीं किया, क्यों नहीं? वैसे जो भी भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में लड़े उनकी तो सदगति निश्चित थी, यहां तक कि जो पूर्व पक्ष में भी, जो अन्य पक्ष दूसरे पक्ष में भी लड़े उनका भी उद्धार हो गया, क्योंकि वो उन्होंने अपने शरीर को, अपने प्राण को त्याग दिया भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके। तो जहां भी भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं और उनकी उपस्थिति में जिनकी मृत्यु होती है, चाहे वो असुर हो या न हो, उन सब का उद्धार होता है। तो उनके भक्तों का, तो उनके भक्तों की बात ही तो दूर है। तो चाहे भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण के उपस्थिति में प्राण त्याग दें या न दें, उनका उनका जो भगवत धाम प्राप्त होना निश्चित है, आज नहीं तो कल। परंतु जो असुर भगवान श्री कृष्ण के सामने मारे जाते हैं श्री कृष्ण के द्वारा या श्री कृष्ण के भक्तों के द्वारा, उनकी भी सदगति निश्चित है। तो महाभारत में ऐसे धर्म के पक्ष में, कृष्ण के पक्ष में लड़ने वाले योद्धा जितने भी थे उनका तो उद्धार हो ही गया। रामायण में तो फिर वानरों को पुनर्जीवित क्यों किया श्री रामचंद्र ने? इसलिए कि वो उन वानरों को भी आनंद प्रदान करना चाहते थे, वो दिखलाना चाहते थे कि जिस उद्देश्य से उन्होंने युद्ध किया वो संपूर्ण हुआ, सीता देवी प्राप्त हो गई और श्री रामचंद्र अभी आगे चल के अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होने वाले थे। तो ये इस दृश्य को देखने का आनंद वो वानर सेना को दिलाना चाहते थे। इस दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र ने उनको पुनः जीवित कर दिया और यहाँ पे थोड़े समय के लिए उनको रहने का अवसर दिया। और जब श्री रामचंद्र चले गए वापस स्वधाम, तो उस समय उनके जितने भी भक्त थे अयोध्या में भी और अन्य स्थानों में, उन सबको वो स्वधाम अयोध्या ले गए।
How shall we sow beech and how to know I am properly watering the beech seed?
तो प्रश्न ये है कि बीज की सेवा सही तरह से कैसे करें और हम बीज का सिंचन सही तरह से कैसे कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चल सकता है? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बीज को ढूंढ निकालने की प्रक्रिया, सारे संपूर्ण सृष्टि के बीज को ढूंढ निकालने की प्रक्रिया, इसको सांख्य योग कहते हैं। और जब हम ढूंढ निकालते हैं बीज को, जब जान लेते हैं कि बीज श्री कृष्ण हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उनके शरण में जाना चाहिए। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के ऐसे ढूंढते ढूंढने के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है सही रूप से कि श्री कृष्ण ही बीज हैं, इस संपूर्ण सृष्टि के सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? माम प्रपद्यते, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति मेरे शरण में आता है। वासुदेव सर्वम इति, ये जानकर कि वासुदेव या श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, उनसे अब उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, वही मूल बीज हैं। तो ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं और ये बहुत दुर्लभ है। तो हमें बीज का ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस बीज श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। शरण में जाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम उनके भक्त बने। भक्त बनने का अर्थ क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवविधा भक्ति के पथ को स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना अधिकृत भक्तों के द्वारा, उनके पवित्र नामों का, उनकी कथाओं का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना इत्यादि। तो भक्ति की जो विविध साधन हैं उनको हृदयपूर्वक हमें स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से हम उस बीज की उपासना सही रूप से करेंगे। हाँ, अंतिम प्रश्न को लेंगे।
महाराज, सभी जीव पहले गोलोक वृंदावन गोलोक में थे, लेकिन हमारे स्वतंत्र इच्छा के कारण हम इस भौतिक जगत में आ गए। अगर हम फिर से भक्ति वगैरह करके शुद्ध भक्त बनके गोलोक वृंदावन जाएंगे तो फिर से हम भौतिक जगत में आने की संभावना होती है क्या? और हम भौतिक जगत में आने के लिए दो कारण बताए जाते हैं, एक तो भगवान से द्वेष और दूसरा है कि हमारी भौतिक इच्छा। तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है?
वैसे जीव कहाँ से आए, कैसे आए, इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है कि जब हम जाएंगे भगवान के धाम शुद्ध भक्त बन के, तो फिर लौट के नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवद गीता में भगवान ऐसे कहते हैं, एक बार कोई मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा, न निवर्तन्ते यद गत्वा, वहां जाकर उस मेरे परम धाम को प्राप्त होके, यद गत्वा न निवर्तन्ते, लौट के पुनः नहीं आएगा। तद धाम परमम मम, तो वो धाम मेरा परम धाम है। तो इसलिए क्योंकि भगवान आश्वासन देते हैं हमें कि एक बार हम वहां गए फिर लौट के नहीं आएंगे, तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि हम अभी लौट के नहीं आएंगे इस भौतिक जगत में। ठीक है, तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आपने इस कथा को सुना। हरे कृष्ण प्रभु ने मुझे कल रात पूछा था कि क्या मैं आप सबके बीच में आ सकता हूँ, तो बड़े प्रसन्नता से मैंने स्वीकार किया, क्योंकि ऋषिकेश से संबंधित मेरे बहुत पुराने विचार हैं और यादें हैं। तो आशा करते हैं कि आप वहाँ पर अच्छी तरह से ऋषिकेश में गंगा मैया के शरण में रह के अच्छी तरह से आप भक्ति करते रहेंगे, और वहाँ जितने भी पास में रहने वाले भी लोग हैं उन सबको भी भक्ति के रास्ते में लाएंगे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।